Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
सचमुच में ये जो गुणों का वर्णन किया जाता है सो हमारे भीतर भी गुण का प्रवेश हो, गुणाधान हो, दोष निकले और हीनांग पूर्ति, जो कमी है उसकी पूर्ति हो, इन तीन बातों के लिए स्मृति की जाती है। न वास्तव में किसी महापुरुष का जन्म न मृत्यु, शरीर का जन्म शरीर की मृत्यु, लेकिन उस शरीर के द्वारा जो जो उनमें लक्षण थे, विशेषता थी, गुण था, वो सब भगवान का था। भगवान ने स्वयं कहा यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ। जहां कहीं भी कुछ विशेषता दिखती है वो विशेषता है तो हमारी, लेकिन उस मनुष्य में दिखती है। तो विशेषता जिसमें दिखती है वो भगवान की विभूति है। यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ तत् तदेवावगच्छत्वम, वो मेरी समझो, ये भगवान ने स्वयं कहा। तो ऐसे महापुरुषों का चाहे अवतार हो चाहे उपसंहार हो, वो दोनों एक ही बात है। महाराज जी का परिचय आप सब लोगों को मालूम ही है, यहां उन्होंने क्या क्या किया, किस किस को क्या क्या संदेश उपदेश निर्देश दिया। अब रही बात उन्होंने जो अपने उत्तराधिकारी, देखिए परंपरा की बात होती है, महाराज जी ने करीब 4-5 महीने पहले हैं श्री ओंकारानंद जी महाराज को महंत बना दिया। इसके पश्चात कहीं उन्होंने दस्तखत नहीं किया, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया, व्यवस्था सब उनको सौंप दी। ठीक उसी प्रकार से महंत जी ने भी पहले व्यवस्था सौंप दी, 2-3 महीना पहले स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को महंत बना दिया और मथुरा वृंदावन के जितने भी महंत थे सबको बुलाया, सबका आदर किया, सबके सामने उनको चादर उड़ाई। इस समय आनंद वृंदावन के महंत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। इसके बाद जब उन्होंने चादर उड़ा दी, इसके पश्चात कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। वो अपने यहीं बंबई में आ गए थे और लगभग 2 महीने तो अस्पताल में ही थे, अस्वस्थ तो थे ही। तो कल एकादशी उत्तरायण आ गए, देखिए सूर्य भगवान कितनी अच्छी गति पाई। तो इसलिए हालांकि उनकी गति न गति के लिए कोई अगति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 मिनट मौन रहेंगे। परिवार में कहा जाता है उनकी परिवार वालों को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा तो आकाश की तरह नित्य है, वो तो कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोकाचार है, तो उस दृष्टि से 2 मिनट मौन रहेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं महाराज जी के चरणों में। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि किसी के बारे में कुछ कहने के लिए हमें ये लाभ होता है, हमारे भीतर वे गुण आ जाते हैं, गुणों का प्रवेश हो जाता है जो गुण उस महापुरुष में रहे। इसलिए हमको स्मृति में लाभ होता है। यूं तो आत्मा, जैसा कि आप सुन रहे हैं कैवल्योपनिषद में, सएव ब्रह्मा सएव शिवा सेन्द्रा, वही ब्रह्मा है और वही इंद्र है, वही शिव है, सोक्षरा परम स्वराट, वही अक्षर ब्रह्म है, वही परम स्वतंत्र है, सा विष्णु सएव प्राण, स कालाग्नि सएव चंद्रमा, वही काल है, वही अग्नि है, वही चंद्रमा है, अर्थात उसी के द्वारा जगत का सब कुछ हो रहा है। उसी को जान करके, उसी रूप में उसको पहचान करके, तम ज्ञात्वा मृत्यु मत्तेति, उसी से मृत्यु पार हुआ जाता है। कहते नान्या पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बात आपने सुनी थी। असल में हमारा जो स्वरूप है वो सत चित आनंद रूप है। यदि सत कहीं अलग होगा, हमारी सत्ता से अलग होगा, तो उसे सोना पड़ेगा, वो तो बेहोश होगा। और यदि चित हमसे दूर होगा, अलग कहीं होगा, तो शरणागति होगी, दूसरे का ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। और यदि आनंद हमारा अन्य होगा, हमसे अलग होगा, तो पराधीन हो जाएंगे, इंद्रियों से भीख मांगनी पड़ेगी। जिससे हमको आनंद बाहर से मिले, उसकी हां हजूरी करनी पड़ेगी, पराधीनता तो होगी ना। अपना आनंद अगर अपने आप समझ में आ जाए कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तो आपको इंद्रियों से भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी और किसी भी स्वजन संबंधी से आपको नहीं भीख मांगनी पड़ेगी। कितना जीवन स्वाधीन हो जाएगा। अपने को आनंद स्वरूप जानने मात्र से आप स्वाधीन हो जाएंगे, आपकी पराधीनता कट जाएगी। जिसको कि आप अभी तक रजोगुण और तमोगुण में सत्ता का और चित्ता का भान करते रहे, उस आनंद का भान यदि अनुभव में आ जाएगा, तो फिर क्यों पराधीन होंगे। इस बात को बताने के लिए सर्वात्म भाव बताया और फिर बताया कि उसी को जान करके आप मुक्त हो सकते हैं, जेल से छूट सकते हैं, बंधन से निवृत्त हो सकते हैं। तो एक प्रश्न रह गया, वो प्रश्न ये रह गया, क्या जैसे मेरे में आत्मा है, मैं हूं और अनुभव करता हूं कि मेरा कभी अभाव नहीं है, ऐसे सब हैं क्या? जिन जिन पर हमारी दृष्टि जाती है, इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो सुन के, चाहे देख के, चाहे सूंघ के, जिन जिन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो प्राणी मात्र या पदार्थ मात्र, सब में वो परमात्मा है कि हम ही में अकेला है, एक प्रश्न उठ जाता है। तब उसके लिए आगे का मंत्र बताया, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ज्यों का त्यों यही श्लोक गीता में भी थोड़ी है, थोड़ा हटके छठवें अध्याय का 29वां मंत्र है। तो छठवें गीता के छठवें अध्याय के 29, 30 और 31 ये तीन श्लोक बहुत मार्मिक हैं, बड़े देखने लायक। पहले में है सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। ये इसमें ईक्षते योग युक्तात्मा है। और दूसरे में योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। ये छठवें अध्याय का 30वां। और तीसरा मंत्र है उसमें आया भजत तेकत्वमाश्रिता और जो सब ज्यों का त्यों। समय युक्त तमो मता समय मयि वर्तते सये युक्त युक्त तमो मता। देखिए जो परमात्मा को सब में और सब पदार्थ परमात्मा में दिखाई देते हैं जिस महापुरुष को, कहते हैं वो तो मेरे में ही वर्तता है, सा मई वर्तते। और वो सब कुछ करते हुए भी वो न करता है। सर्वथा वर्तमानोपी सहयोगी मई वर्तते। वो सब कुछ वर्तमान वृतु वर्तन है, व्यवहार हर व्यवहार करने पर भी वो मेरे में ही विराजमान है। आप देखो जरा इस पर विचार करो। जैसे अभी आपने सुना कि चित्त को अलग अगर हम समझेंगे, हमसे अलग है, तो आपको ये निश्चय समझ लेना चाहिए किसी न किसी की शरणागति लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो चेतन होगा उसी की शरणागति लेनी पड़ेगी। शरणागति माने उसके आश्रय में रहना पड़ेगा जो चेतन होगा, क्योंकि स्वयं तो जड़ बन गए जब चेतन नहीं है। अगर हमसे अलग चित है तो हमको शरणागति लेनी पड़ेगी, और अगर हमको अलग सतह दिखाई दे रहा तो हमें सोना पड़ेगा, मरना ही है ना। सत हमसे अलग भी कोई है, और हमसे अलग अगर आनंद मान लिया तो पराधीन होना पड़ेगा। और जरा इस बात पर थोड़ा विचार कर लेना, इसका मतलब यह है कि मैं ही सत हूं, मैं ही सत हूं, मेरी सत्ता है, मेरा कभी अभाव नहीं होता है, मैं ही चित हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ थोड़ी हो सकता, और मैं ही आनंद हूं, मेरा आनंद स्वरूप है, मैं आनंद रूप हूं। यह निश्चय जब होगा तो आप पराधीनता कट जाएगी, स्वाधीन हो जाओ। अच्छा, सर्वभूतस्थ मात्मानम जो कहा गया, भूतस्थ स्थिति अर्थ है, ये अधिकरण वाची है। व्याकरण में सप्तमी जहां होती है, जैसे मोक्षे इच्छास्ति, इच्छार्थक में भी होती है और अधिकरण में भी होती है, अधिष्ठान आधार कहिए। जैसे ये पुस्तक इस का आधार बनी हुई है, तो इसीलिए नीचे कहा गया संपश्यन। जो कोई अच्छी तरह से इस पर विचार कर लेगा, देख लेगा, समझ लेगा, परमं ब्रह्म वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को पहचान लेगा। याति याति माने गत्यर्थक धातुएं, गति ज्ञान मोक्ष प्राप्ति चार अर्थ में होती, तो वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। आप देखो जरा इस पर सोच लो, सर्वभूतस्थमात्मानम संपूर्ण भूत प्राणी अपनी आत्मा में और आत्मा सब में। जैसे हम कहा हैं कि मिट्टी के बने हुए जितने भी बर्तन हैं, सब बर्तनों में मिट्टी ही है, ये अन्वय हो गया। तो क्या कहेंगे, मिट्टी ही घट है। तो मिट्टी ही घट है माने घट का आकार मिट्टी ने ले लिया है, इसको थोड़ा समझ लेना। मिट्टी के मिट्टी ने अपना आकार घट रूप में ले लिया, तो ये बात तो आप बोल सकते हो कि मिट्टी ही घट है, लेकिन ये नहीं बोल सकते घट ही मिट्टी है, क्यों भाई सुराही भी तो है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि परमात्मा ही जगत रूप में है, नाम रूपाणी व्याकरवाणी, नाम रूप में परमात्मा विराजमान हो गया, लेकिन परमात्मा ही जगत है ये नहीं कह सकते। क्यों, जगत जब नहीं दिखाई देता है तब भी तो परमात्मा है, सुषुप्ति में जगत दिखाई नहीं देता, सुषुप्ति में ना औजार है जगत को देखने का, ना जगत नाम की कोई चीज है। गहरी नींद में जब आप आते हो, ये सब का प्रैक्टिकल अनुभव है, तो उस समय तो जगत नहीं दिखाई देता। तो वेद ने कहा पुरुषे वेदज्ञं यच्च भूतम यच्च भाव्यम, आपके यहां कैवल्य उपनिषद में भी आया, भाव्यम सनातनम यत सर्वम यद भूतम, जो कुछ भूत में हो गया जो आगे भविष्य में भी होगा वो सब परमात्मा है। भूतम भव्यम सनातनम, भूत का और भूत का, तो ये जो भूत है सो मजे की बात है, ये भवति से बना है, भवति 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 इति भूतानी बहुवचन प्रयोग हुआ, माने जो पैदा हुआ है, पैदा हुआ है और मरा है, इस सब में परमात्मा इसका अधिष्ठान है। कैसे, जैसे सिनेमा का आजकल उदाहरण जल्दी समझ में आ जाता, जैसे सिनेमा के पर्दा में बंदूक वाले पैदा होते हैं, घोड़ा वाले भी पैदा होते हैं। हमने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, एक बड़े पढ़े लिखे थे सो अपने पिताजी को ले गए, चलो सिनेमा देख लो चले पिताजी, तो पहले तो वहां सिनेमा हॉल में वो गए बड़े मुश्किल में, फिर गए तो अंधेरा हो गया, बोले अंधेरे में जो दिखता है जो दिखता ही नहीं, यहां अंधेरा कर दिया गया। फिर बहुत घबराए, खैर उनका बैठे रहो चुप्पे कोई बात नहीं, बैठे थोड़ी देर में तो बहुत से मिलिट्री के घोड़े आए, अब ऊपर चढ़ते चले आए, बोले अरे अरे हाँ बचाओ बचाओ बचाओ, और उठ के चल दिए। लोगों ने कहा कि पर्दा में दिखता है लेकिन ऊपर नहीं आएगा, बोले वाह ऊपर बिल्कुल आता चला गया और कह रहे ऊपर नहीं आएगा, हम तो जा रहे हैं, उठ के चल दिए। ऐसे ये जगत का पर्दा है माया का, इस माया के पर्दा में दिखता तो है लेकिन वो है नहीं, सत्य नहीं है, दिखता भर है। तो जो दिखता है वो सत्य हो ये जरूरी थोड़ी है, जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है वो सत्य भी हो ये जरूरी नहीं। सत्य तो वो होता है जो परिवर्तन न हो, जो जिसका कभी आज है कल न रहे वो कैसे सत्य हो सकता। सत्य तो त्रिकाला बाधित्यम सत्यम, तीनों कालों में अबाधित रूप जो होता है वही सत्य होता है। तो सत्य की ये पहचान है, सत्य की परिभाषा है, मैं जो हूं इसका तीनों कालों में बाध नहीं होता है। देखो जय जागृत में भी आप अनुभव कर रहे हैं मैं हूं, जब सपना देखते हो तो ये दृश्य दिखाई देता है, तो मैं अगर नहीं हूं तो ये दृश्य देखता कौन है। और सुषुप्ति अवस्था जब गहरी नींद होती तो और कुछ नहीं दिखता है तो अभाव तो दिखता है। तो आप जब जगते हो तब बुद्धि के साथ तादात्म करके ये कहते हो मैंने कुछ नहीं जाना, तो जानने का जो निषेध है, नहीं जाना माने जानने का जो अभाव था उसको भी तो आपने देखा। जैसे हम कहें उस कमरे में चले जाओ और वहां जाकर के देखना कौन कौन लोग हैं, तो आप कमरे से बाहर लौट के आए और बोले कि उस कमरे में कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो वो तो है, जिस व्यक्ति ने देखा है कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आप नहीं थे तो ये कैसे जाना कोई नहीं है। तो कोई नहीं है इसका भी जानकार वो है, इसलिए आपका कभी अभाव नहीं हो सकता, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति अवस्था हो। माने भाव और अभाव दोनों का देखने वाले आप ही हैं। इसलिए यहां सप्तमी विभक्ति में सर्वभूतस्थ कहा गया, माने संपूर्ण भूत प्राणी मात्र चाहे मरे और चाहे जिए वो एक साई रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं। और वो कौन? वो आप, मैं। अपना मैं ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए ये बात बताई गई सर्वभूतस्थ आत्मानम। ये बताई क्यों गई? ये इसलिए बताई गई कि हमारे जीवन में प्रायः हम दूसरे आकारों को सत्य समझ करके राग द्वेष कर बैठते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। अगर राग द्वेष हम में न हो तो हम दुखी न हो। राग तो आप कई बार सुन चुके, आग है एक तरह की। तो ये जो राग द्वेष है यही हमको भटकाता है, यही दुखी करता है। तो यदि आपके जीवन में ये बात आ जाएगी कि अरे मैं ही तो सब में हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर अपने से अपने के प्रति राग और अपने के प्रति द्वेष थोड़ी होता है। अभी आप लोगों की बहुत भीड़ हो और अपना कोई आ जाएगा तो माताएं झट जगह कर देती, आओ आओ बैठ जाओ। और अगर अपना कोई न हो तो अरे यहां कहां जगह, यहां बैठने लगी, तुरंत मना कर दें। ये माताओं की आदत। अब बंबई में भले न हो लेकिन और तो प्राय देखा गया, जो अपना होगा तो झट अपने सकल जाएंगी, बैठ जाएंगे, बैठ जाओ कोई बात। और दूसरा कोई होगा जिससे परिचय नहीं है उसको, अरे हमने तो देखा नहीं, बोलो कृष्ण भगवान की।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 19 जनवरी शनिवार, अब शांति पाठ होगा। हरि ओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।